ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग चौथा। श्री राम जी बोले, हे भगवान, ऐसे मन का रूप क्या है जिससे कि संसार रूपी दुखों की मंजरी बढ़ती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस मन का रूप कुछ देखने में नहीं आता। यह मन नाम मात्र है, वास्तव में इसका रूप कुछ नहीं है और आकाश की नहीं शून्य है। हे राम जी, मन आत्मा में कुछ उपजा नहीं। जैसे सूर्य में तेज, वायु में स्पंद, जल में तरंग, सुवर्ण में भूषण, मरीचिका में जल है और आकाश में दूसरा चंद्रमा है, वैसे ही मन भी आत्मा में कुछ वास्तव नहीं है। हे राम जी, यह आश्चर्य है कि वास्तव में कुछ उपजा नहीं पर आकाश की नई सब घटों में वर्तता है और संपूर्ण जगत मन से भासता है। असत रूपी जगत जिससे भासता है उसी का नाम मन है। हे राम जी, आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। द्वैत रूप जगत जिसमें भासता है उसका नाम मन है और संकल्प विकल्प जो फुरता है वह मन का रूप है। जहां जहां संकल्प फुरता है वहां वहां मन है। जैसे जहां जहां तरंग फुरते हैं वहां वहां जल है, वैसे ही जहां जहां संकल्प फुरता है वहां वहां मन है। मन के और भी नाम है, स्मृति, अविद्या, मलिनता और तम, यह सब इसी के नाम ज्ञानवान पुरुष जानते हैं। हे रामचंद्र जी, जितना जगत जाल भासता है सो सब मन से उत्पन्न हुआ है और सब दृश्य मन रूप है, क्योंकि मन का रचा हुआ है वास्तव में कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी देह का नाम अंतवाहक शरीर है। वह संकल्प रूप सब जीवों का आदि वपु है। उस संकल्प में जो दृढ़ अभ्यास हुआ है उससे आदि भौतिक भासने लगा है और आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है। हे राम जी, यह जगत संकल्प रूप है और स्वरूप के प्रमाद से पिंडाकार भासता है। जैसे स्वप्न देह का आकार आकाश रूप है, उसमें पृथ्वी आदि तत्वों का अभाव होता है, परंतु अज्ञान से आदि भौतिकता भासती है सो मन ही का संसरना है, वैसे यह जगत है, मन के फुरने से भासता है। हे रामचंद्र जी, जहां मन है वह दृश्य है और जहां दृश्य है वहां मन है। जब मन नष्ट हो तब दृश्य भी नष्ट हो। शुद्ध बोध मात्र में जो दृश्य भासता है सोई मन है। जब तक दृश्य भासता है तब तक मुक्त न होगा। जब दृश्य भ्रम नष्ट होगा तब शुद्ध बोध प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, यह त्रिपुटी मन से भासती है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी भासती है और जब जाग उठा तब त्रिपुटी का अभाव हो जाता है और आप ही भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागे हुए को अपना आप अद्वैत ही भासता है। जब तक शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हुआ तब तक दृश्य भ्रम निवृत्त नहीं होता। वह बाह्य देखता है तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है, अंतर देखता है तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है और उसको सत्य जानकर राग द्वेष कल्पना उठती है। जब मन आत्मपद को प्राप्त होता है तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे जब वायु की स्पंदता मिटती है तब वृक्ष के पत्रों का हिलना भी मिट जाता है। इसे मन रूपी दृश्य ही बंधन का कारण है। राम जी बोले, हे भगवान, यह दृश्य रूपी विसूची का रोग है, उसकी निवृत्ति कैसे हो सो कृपा करके कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार रूपी वैताल जिसको लगा है उसकी निवृत्ति इस प्रकार होती है कि प्रथम तो विचार करके जगत का स्वरूप जानो, उसके अनंतर जब आत्मपद में विश्रांति होगी तब तुम सर्व आत्मा होंगे। हे राम जी, दृश्य भ्रम जो तुमको भासता है उसको मैं उत्तर ग्रंथ से निवृत्त करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सुनिए, यह दृश्य मन से उपजा है और इसका सद्भाव मन में ही हुआ है। जैसे कमल का उपजना कमल के बीज में है, वैसे ही संसार का उपजना स्मृति से होता है। वह स्मृति अनुभव आकाश में होती है। हे राम जी, स्मृति पदार्थ की होती है जिसका अनुभव पहले होता है। जितना कुछ जगत तुमको भासता है सो संकल्प रूप है, कोई पदार्थ सतरूप नहीं। जो वस्तु असतरूप है उसकी स्थिरता नहीं होती और जो वस्तु सतरूप है उसका अभाव कदाचित नहीं होता। जितना कुछ प्रपंच भासता है सो असतरूप है, मन के चिंतन से उत्पन्न हुआ है। जब फूरने से रहित हो तो जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, पृथ्वी पर्वत आदि जगत असतरूप न होते तो मुक्त भी कोई न होता। मुक्त तो दृश्य भ्रम से होता है, जो दृश्य भ्रम नष्ट न होता तो मुक्त भी कोई न होता। पर महर्षि राजर्षि देवता इत्यादि बहुतरे मुक्त हुए हैं, इस कारण कहता हूं कि दृश्य असत्य रूप मन के संकल्प में स्थित है। हे राम जी, एक मन को स्थिर कर देखो, फिर अहम तुम आदि जगत तुमको न भासित होगा। चित्तरूपी आदर्श में संकल्प रूपी दृश्य मलिनता है। जब मलिनता दूर होगी तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। हे रामचंद्र जी, यह दृश्य भ्रम मिथ्या उदय हुआ है। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्नपुर वैसे ही यह जगत भी है। जैसे शुद्ध आदर्श में पर्वत का प्रतिबिंब होता है वैसे ही चित्तरूपी आदर्श में यह दृश्य प्रतिबिंब है। मुकुर में जो पर्वत का प्रतिबिंब होता है सो आकाश रूप है, उसमें कुछ पर्वत का सद्भाव नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का सद्भाव नहीं है। जैसे बालक को भ्रम से परिचय में पिशाच बुद्धि होती है वैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है, वास्तव में जगत कुछ नहीं है। हे राम जी, न कुछ मन उपजा है और न कुछ जगत उपजा है, दोनों असत्य रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से और समुद्र जल से पूर्ण है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित और पूर्ण है, और उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह तुम्हारे वचन ऐसे है जैसे कहिए कि बंध्या के पुत्र ने पर्वत को चूर्ण किया, शशे के श्रृंग अति सुंदर है, रेत से तेल निकलता है और पत्थर की शिला नृत्य करती व मूर्ति का मेघ गर्जन और पत्थर की पुतलियां गान करती हैं। तुम कहते हो कि दृश्य कुछ उपजा नहीं और है ही नहीं, और मुझको ये जरा मृत्यु आदि विकारों सहित प्रत्यक्ष भासते हैं, इससे मेरे मन में तुम्हारे वचनों का सद्भाव नहीं स्थिर होता। कदाचित तुम्हारे निश्चय में इसी प्रकार है तो अपना निश्चय मुझको बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हमारे वचन यथार्थ है, हमने असत कदाचित नहीं कहा। तुम विचार के देखो, यह जगत आडंबर बिना कारण हुआ है। जब महाप्रलय होता है तब शुद्ध चैतन्य संवित रह जाता है और उसमें कार्य कारण कोई कल्पना नहीं रहती, उसमें फिर यह जगत कारण बिना फुरता है। जैसे सुषुप्ति में स्वप्न सृष्टि फुरती है और जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है, वैसे यह सृष्टि भी अकारण ही है। हे रामचंद्र जी, जिसका समवाय कारण और निमित्त कारण न हो और प्रत्यक्ष भासे, उसे जानिए कि भ्रांति रूप है। जैसे तुमको नित्य स्वप्न का अनुभव होता है और उसमें नाना प्रकार के पदार्थ कार्य कारण सहित भासते हैं पर कारण बिना है, वैसे यह जगत भी कारण बिना है। इसे आदि कारण बिना ही यह जगत उपजा है। जैसे गंधर्व नगर, संकल्पपुर और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही यह जगत भासता है। कोई पदार्थ सत नहीं। जैसे स्वप्न में राजमहल और नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, सो किसी कारण से तो नहीं उपजे, केवल आकाश रूप मन के संसरने से सब भासते हैं, वैसे यह जगत चित्त के संसरने से भासता है। जैसे स्वप्न में और स्वप्न भासता है और फिर उसमें और स्वप्न भासता है, वैसे ही यह जगत भासता है, और वैसे ही जगत जगत जाल मन की कल्पना से भासता है। हे रामचंद्र जी, चलना दौड़ना, देना लेना, बोलना सुनना, रुंधना इत्यादि विषय और राग द्वेष आदि विकार सब मन के फुरने से होते हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं है। जब मन उपशम होता है तब सब कल्पनाएं निवृत्त हो जाती है। इसे संसार का कारण मन ही है। श्री राम जी बोले, हे भगवान, मन का रूप क्या है? वह तो मायामय है, इसका होना जिससे है सो कौन पद है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत का अभाव हो जाता है और पीछे जो शेष रहता है सो सत्रूप है। सर्ग के आदि में भी सत्रूप होता है, उसका नाश कदाचित नहीं होता। वह सदा प्रकाश रूप परम देव, शुद्ध परमात्म तत्व, अज अविनाशी और अद्वैत है, उसको वाणी नहीं कह सकती। वही पद जीवन मुक्त पाता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा आदिक शब्द कल्पित है, स्वाभाविक कोई शब्द नहीं प्रवर्तता। शिष्य को बताने के लिए शास्त्रकारों ने देव के बहुत नाम कल्पे हैं। मुख्य तो देव को पुरुष कहते हैं, वेदांतवादी उसी को ब्रह्म कहते हैं और विज्ञानवादी उसी को विज्ञान से बोध कहते हैं। कोई कहते हैं कि निर्मल रूप है, शून्यवादी कहते हैं शून्य ही शेष रहता है और कोई कहते हैं प्रकाश रूप है, जिसके प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाशते हैं, एक उसको वक्ता कहते हैं कि आदिदेव का वक्ता वही है, और स्मृति कर्ता कहते हैं कि सब कुछ वह स्मृति से करने वाला है और सब कुछ उसकी इच्छा से हुआ है। इससे सबका कर्ता सर्वात्मा है। हे रामचंद्र जी, इसी तरह अनेक नाम शास्त्रकारों ने कहे हैं। इन सबका अधिष्ठान परम देव है और अस्थि आदि षड विकारों से रहित शुद्ध चैतन्य और सूर्यवत प्रकाश रूप है। वही देव सब जगत में पूर्ण हो रहा है। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी सूर्य है और ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक उसकी किरणें हैं। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग बुदबुदे उत्पन्न होकर लीन होते हैं और सब पदार्थ उस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे दीपक अपने आप से प्रकाशता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशता है और सबको सत्ता देने वाला है। हे राम जी, वृक्ष आत्म सत्ता से उपजता है, आकाश में शून्यता उसी की है और अग्नि में उष्णता, जल में द्रवता, पवन में स्पर्श उसी का है। निदान सब पदार्थों की सत्ता वही है। मोरों के पंखों में रंग आत्मसत्ता से ही हुआ है। पत्थर में मूंगा और पत्थरों में जड़ता उसी की है। और स्थावर जंगम जगत का अधिष्ठान रूप वही ब्रह्म है। हे राम जी, आत्मरूपी चंद्रमा की किरणों से ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु उत्पन्न होते हैं। वह चंद्रमा शीतलता और अमृत से पूर्ण है। ब्रह्म रूपी मेघ है, उससे जीव रूपी बूंदे टपकती हैं। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और छिप जाता है, वैसे ही जगत प्रकट होता है और फिर छिप जाता है। सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है और वह नित्य शुद्ध बुद्ध और परमानंद है। सब सत्य असत्य रूप पदार्थ उसी आत्मसत्ता से होते हैं। हे राम जी, उस देव की सत्ता से जड़ पुर्यष्टक चैतन्य होकर चेष्टा करती है। जैसे चुंबक पत्थर की सत्ता से लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही चैतन्य रूपी चुंबक मणि से देह चेष्टा करती है। वह आत्मा नित्य चैतन्य और सबका कर्ता है। उसका कर्ता और कोई नहीं। वह सबसे अभेद रूप समान सत्ता है और उदय अस्त से रहित है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष उस देव का साक्षात्कार करता है, उसकी सब क्रिया नष्ट हो जाती है और चिद जड़ ग्रंथि छिद जाती है और केवल बोध रूप होते हैं। जब स्वभाव सत्ता में मन स्थित होता है, तब मृत्यु को सम्मुख देखकर वह विफल नहीं होता। इतना कहकर फिर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह देव किसी स्थान में नहीं रहता और कहीं दूर भी नहीं है, वह तो अपने आप में ही स्थित है। हे राघव, घट घट में वह देव है, पर अज्ञानी को दूर भासता है। स्नान, दान, तप आदि से वह प्राप्त नहीं होता, केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है, कर्तव्य से प्राप्त नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है, वह कर्तव्यता निवृत्त नहीं होती, केवल ज्ञातव्य से ही निवृत्त होती है। वैसे ही जगत की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है। हे रामचंद्र जी, कर्तव्य भी यही है जो ज्ञातव्य रूप है, अर्थात यह कि जिससे ज्ञातव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। राम जी बोले, हे भगवान, जिस देव के जानने से पुरुष फिर जन्म मरण को नहीं प्राप्त होता, वह कहाँ रहता है और किस तप और क्लेश से उसकी प्राप्ति होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, किसी तप से उस देव की प्राप्ति नहीं होती, केवल अपने पुरुष पौरुष और प्रयत्न से ही उसकी प्राप्ति होती है। जितना कुछ राग, द्वेष, काम, क्रोध, मत्सर और अभिमान सहित तप है, वह निष्फल दंभ ही है। इनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, इसकी परम औषध सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार है। जैसे दृश्य रूपी विसूची का निवृत्त होती है, प्रथम इसका आचार भी शास्त्र और लौकिक अविरुद्ध हो, अर्थात शास्त्रों के अनुसार हो और भोग रूपी गड्ढे में न गिरे। दूसरे, संतोष संयुक्त यथालाभ संतुष्ट होकर अनिच्छित भोगों को प्राप्त हो और जो शास्त्र अविरुद्ध हो उसका ग्रहण करे और जो विरुद्ध हो उसका त्याग करे, इससे दीन न हो, ऐसे उदारात्मा को शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मपद पाने का कारण सत्संग और सत्शास्त्र ही है। संत वह है जिसको सब लोग श्रेष्ठ कहते हैं और सत्शास्त्र वही है जिसमें ब्रह्म निरूपण हो। जब ऐसे संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार हो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य श्रुति विचार द्वारा अपने परम स्वभाव में स्थित होता है, तब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उस पर दया करते हैं और कहते हैं कि यह पुरुष परब्रह्म हुआ है। हे राम जी, संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार निर्मल करता है और दृश्य रूप मैल का नाश करता है। जैसे निर्मली रेत से जल का मैल दूर करती है, वैसे यह पुरुष निर्मल और चैतन्य होता है। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।